नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। केजरीवाल जी का मामला तो भाई कुछ अलग ही किस्म का हो गया है। अलग ही किस्म का इसलिए हो गया है क्योंकि अब सारी समस्या ये आ गई है कि यह दिल्ली सरकार चलेगी कैसे। जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी वाले जो हैं वो उछल उछल के सड़कों पर से, छतों पर से, सब जगह से ये चिल्ला रहे हैं कि भाई देखिए केजरीवाल निर्दोष है इसलिए वो इस्तीफा नहीं देगा। ये देखिए, जब वो समन्स की बात चल रही थी कि बार बार कि भाई हम समन का इसलिए उत्तर नहीं देंगे क्योंकि आप हमें कुछ बता नहीं रहे हैं, आपने आज तक कोई रिकवरी नहीं की है, इत्यादि इत्यादि तरह तरह के बहाने। लेकिन फिर जब अरेस्ट हो गए तब ये हो गया कि भाई हम निर्दोष हैं, आपने निर्दोष को अरेस्ट किया है। यार, निर्दोष को अरेस्ट किया था तो भाई रिमांड क्यों दे दिया? और आपकी बेल की हियरिंग अभी तक नहीं हो पाई है। खबर ये भी है कि हाई कोर्ट में गए थे भाई लोग और हाई कोर्ट ने कहा कि नो अर्ली हियरिंग, हम अभी होली के अवकाश पर हैं और हम आपको होली के अवकाश पर के बाद ही सुनेंगे। ये आपको पता ही है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी बेल की एप्लीकेशन जो गए थे, बल्कि रिट चल गई थी इन्होंने सीधे सीधे 32 में, आर्टिकल 32 में, वो भी विड्रॉ कर ली थी। तो आप सोच रहे होंगे कि हो क्या रहा है अब साथ में ये ड्रामा के साथ, हम रिजाइन नहीं करेंगे और हम सरकार जो है वहीं से चलाएंगे। उसमें क्रम में आपको पता है कि एक चिट्ठी भी आ गई कि साहब ये नोट आया है, आतिशी ने ड्रामा किया। आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया और ये कहा कि ये लेटर जो है ये फ्रॉड है, लेटर फ्रॉड है। तो फिर आतिशी ने फ्रॉड किया है यदि, तो अब आतिशी की भी जांच होगी। आतिशी की जांच तो होगी, लेकिन अब समस्या दूसरी खड़ी हो गई है और वो बड़ी भारी संवैधानिक समस्या है कि भाई चीफ मिनिस्टर जेल में है तो सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि आज तक ये हुआ नहीं। इससे पहले भी 3 चीफ मिनिस्टर जेल गए हैं। सबसे पहले 1996 में जयललिता जेल गई थी, लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने रिजाइन करके ओ पन्नीर सेल्वम को अपने स्थान पर नियुक्त कर दिया। इसी तरह लालू जी 1997 में जेल गए थे, जेल जाने से पहले उन्होंने रिजाइन करके इस्तीफा देके अपने स्थान पर अपनी पत्नी रावड़ी देवी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया था। तीसरा जो केस है वो ईडी से ही संबंधित है और बिल्कुल ताजा ताजा है, वो है हेमंत सोरेन का। तो हेमंत सोरेन ने भी जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था, बल्कि उनका तो इस तरह से हुआ था, उन्होंने ईडी से रिक्वेस्ट की थी कि भाई ऐसा है कि आपके साथ मैं चलता हूँ, आप हमारे साथ चलो, हम जाते हैं गवर्नर साहब के यहाँ, वहाँ मैं उनको इस्तीफा दूंगा, उसके बाद आप मुझे अरेस्ट करना। उनको भी ये था कि भाई जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है उसकी कुछ तो जो गरिमा है वो रखी जानी चाहिए, वो बिल्कुल उसको धूल धूसरित नहीं कर देना चाहिए, आखिरकार चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर होता है। लेकिन केजरीवाल जी तो आपको पता है जनक्रांति करने आए हैं, तो जनक्रांति करने वाले के लिए ऐसी किसी भी आवश्यकता की आवश्यकता नहीं है। अब जो बातचीत आ रही है सामने वो ये है कि अब केंद्र सरकार में, विशेषकर होम मिनिस्ट्री में, क्योंकि दिल्ली की सारी जो मैटर है, दिल्ली का, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, वो अलग से एक स्पेशल स्टेटस उसको दिया हुआ है यूनियन टेरिटरीज में, लेकिन है तो यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन टेरिटरीज का अलग से डिवीजन है होम मिनिस्ट्री में, एमएचए में। तो एमएचए में अब ये चर्चा हो रही है कि भाई क्या किया जाए, क्योंकि ये विचित्र समस्या है जिसको कभी भी संविधान ने इसकी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह के लोग भी होंगे जो गिरफ्तार होने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे। कतई हमारे जो संविधान के जो निर्माता थे, जो हमारे फाउंडर्स थे, उनके ध्यान में और उनकी कल्पना में कभी ये बात नहीं आई होगी कि कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री, इस तरह का व्यक्ति जो है वो इतना भी नीचे गिर सकता है। लेकिन घुंगरू सेठ की तो बात ही क्या है, वो तो जितना भी नीचे, जो डीपेस्ट से डीपेस्ट जो आप कोई पता कर सकते हैं, ट्रेंच जिसको बोलते हैं, तो उस गहराई में भी जाने के लिए वो तैयार है, उनके लिए नथिंग इज टू डीप। तो बात ये चल रही है कि क्या इनको निलंबित कर दिया जाए। अब इसके पक्ष में जो तर्क है वो मैं बता देता हूँ, मैं पूरी इस इशू को डिस्कस करता हूँ क्योंकि अलग अलग तर्क चल रहे हैं। तो एक तर्क ये चल रहा है कि भाई ये भी पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट के लिए नियम ये है कि यदि पब्लिक सर्वेंट 48 घंटे से अधिक पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में रह जाता है तो उसको निलंबित करना अनिवार्य है। अब पब्लिक सर्वेंट तो चीफ मिनिस्टर भी होता है, तो अब चीफ मिनिस्टर को निलंबित दिल्ली सरकार कैसे करे? या तो फिर इसका एक और उपाय हो सकता है कि भाई एक संस्था है लोकपाल, आपको पता है ना कि पूरा का पूरा जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट हुआ था वो इसलिए हुआ था कि साहब लोकपाल होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति में सारी शक्तियां निहित होनी चाहिए और वो जो लोकपाल है वही सारे निर्णय करेगा, और जो विशेषकर जो भ्रष्टाचार से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं वो सब एक लोकपाल में निहित होनी चाहिए। लोकपाल बना दिया गया, लोकपाल इस समय नियुक्ति भी हो गई, जस्टिस खानविलकर जो हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वे उसके चेयरमैन हैं, और उसके अतिरिक्त मेरे विचार से 6 जो है उसमें 3 जुडिशियल मेंबर और 3 एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर और हैं उसमें। तो 3 बेंचेस लगातार चल रही क्योंकि वहां की जो एक बेंच है वो 2-2 से चलती है। अब दूसरा ये इनके पास है कि भाई एक तो ये है कि MHA स्वयं ही निलंबित कर दे, लेकिन उनके पास उसमें दिक्कत ये है कि भाई MHA निलंबित तो करेगी तो उसके बाद कोई ना कोई उठ के आम आदमी पार्टी वाला या सुनीता जी स्वयं वो चले जाएंगे कि साहब की ये गलत हुआ। और बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट का ये मानना है कि भाई रेजिग्नेशन देना जो है वो कतई अनिवार्य नहीं। तो एक तो ये बात चल रही है, दूसरा ये चल रहा है कि भाई लोकपाल के पास जाया जाए। कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि सरकार स्वयं भी कर सकती है, सरकार स्वयं भी इन्वोक कर सकती है लोकपाल का जुरिसडिक्शन और उनसे निर्देश मांग सकती है कि भाई इसमें क्या किया जाए, ये तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है, ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं। और उसमें एक और है कि भाई चाहे केंद्र सरकार या कोई भी नॉर्मल व्यक्ति, वो एक रिट होती है, को वारंटो की रिट ये होती है कि वो किसी भी पब्लिक सर्वेंट के पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपाई करने की को चुनौती देती है। अच्छा, ये कोई भी कर सकता है क्योंकि बाकी में तो जैसे आजकल PIL इत्यादि होती है, अधिकतर वो PIL मैंडेमस में होती है। देखिए 5 तरह की रिट होती है, मैंडेमस, सर्शरेरी, प्रोहिबिशन, को वारंटो और हैबियस कॉर्पस। तो वो हैबियस कॉर्पस तो जनरली कोई गायब वायब हो जाता है तो हैबियस कॉर्पस का मतलब ही होता है प्रोड्यूस द बॉडी, तो ये होता है कि साहब की ये व्यक्ति गायब है इसको प्रोड्यूस किया जाए। और प्रोहिबिशन की होती है कि साहब सरकार को या किसी और को ये कार्य करने से रोका जाए। को वारंटो की होती है कि साहब ये पब्लिक ऑफिस जो ऑक्यूपाई कर रहा है बंदा, ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसके लिए लायक नहीं है, इसको इस पब्लिक ऑफिस से हटाया जाए। को वारंटो के रिट में ये खास बात होती है कि इसमें लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो दिल्ली से कोई भी व्यक्ति जा सकता है और को वारंटो की रिट लगा सकता है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने निर्देश मांगने के लिए कि साहब की इनको इस पद से हटाया जाए। अब उनके सामने भी ये विचित्र स्थिति होगी क्योंकि आज तक इस प्रकार की स्थिति कभी आई नहीं। को वारंटो की रिट तो लगती रहती हैं पब्लिक ऑफिसर्स के सामने, पब्लिक ऑफिसर्स के निमित्त, लेकिन किसी चीफ मिनिस्टर को हटाने के लिए को वारंटो की रिट मेरे विचार से हमारे संविधान के इतिहास में पहली बार लगेगी। तो ये मोटे मोटे ये 3 ऑप्शन इसमें सरकार के पास है, क्योंकि ये तो सभी को निश्चित है कि भाई सरकार तो नहीं चल सकती। एक चौथा ऑप्शन भी है और वो चौथा ऑप्शन ये है कि सरकार प्रेसिडेंट्स रूल लगा दे और दिल्ली सरकार का कामकाज सीधे अपने हाथ में LG के माध्यम से ले ले। और उस प्रेसिडेंस रूल में, वैसे तो प्रेसिडेंस रूल लगाने के मतलब अर्थ तो यही है कि वैसे तो वैसे ही यूनियन टेरिटरी है, वैसे ही यूनियन यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन चूंकि वहाँ एक चुनी हुई सरकार है तो बेसिकली वो असेंबली को सस्पेंड करना होगा, और असेंबली को सस्पेंड करते ही दिल्ली सरकार जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में पूरी तरह से आ जाएगी। तो अब ये चार ऑप्शंस हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि एक काम जो नहीं हो सकता वो ये नहीं हो सकता कि घुंगरू सेठ जो है ईडी की कस्टडी में या तिहाड़ जेल से सरकार नहीं चला सकते। तो आगे फिर घुंगरू सेठ क्या करेंगे, अब तो एनआईए भी लगने वाली है, आपको पता ही है, पन्नू का स्टेटमेंट आ गया है, भाई घुंगरू सेठ बड़ी मुसीबत में है, चीफ मिनिस्टरशिप तो पक्की जाएगी और आगे कितने दिन लंबे नपेंगे उसका कोई हिसाब नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।